कई महीने बीत चुके लेकिन प्रेम शंकर अपील दायर करने का निश्चय न कर सके। इस काम में उन्हें किसी दूसरे से मदद मिलने की आशा न होती थी, उसे वह बड़ी तत्परता के साथ करते थे। लेकिन जब कोई उन्हें सहारा देने के लिए हाथ बढ़ा देता तब वह उन पर एक विचित्र शिथिलता से छा जाती थी। इसके सिवा धनाभाव की अपील भी बाधा बनी हुई थी अपील करने में। दीवाने के खर्च ने उन्हें इतना जेर बार कर दिया था कि हाई कोर्ट जाने की हिम्मत न पड़ती थी। यदि कितने आदमियों को उनसे श्रद्धा थी और वह इस पूर्ण कार्य के लिए पर्याप्त धन एकत्र कर सकते थे, पर उनकी स्वाभाविक सरलता और कातरता इस आधार को उनकी कल्पना में भी न आने देती थी। एक दिन संध्या समय प्रेमशंकर बैठे हुए समाचार पत्र देख रहे थे। गोरखपुर के सनातन धर्म महोत्सव का समाचार मोटे अक्षरों में छपा हुआ दिखाई दिया। गौर से पढ़ने लगे। ज्ञान शंकर को उन्होंने मन में धूर्त और स्वार्थ प्रणता का पुतला समझ रखा था। उनकी सत्य निष्ठा और धर्म प्रणता का वृत्तांत पढ़कर उन्होंने अपनी संकीर्णता पर अत्यंत खेद हुआ। मैं कितना निर्बुद्धि हूँ, ऐसे दिव्य और विमल आत्मा का अनुचित संदेह करने लगा। ज्ञान शंकर के प्रति उनके हृदय में भक्ति के तरंगे से उठने लगी। उनकी सराहना करने के लिए ऐसी उत्कट इच्छा हुई कि उन्होंने मस्ता और भोला को कई बार पुकारा। जब उनसे में से किसी ने जवाब न दिया तो वे मस्ता के झोपड़ी की ओर चले। अकस्मात दुर्गा मस्ता और प्रशासक कई और नौकर एक एक मनुष्य खींच कर लाते हुए दिखाई दिए। सबके सब उसे गालियां दे रहे थे और मस्ता रह रह कर एक धौल जमा देता था। प्रेमशंकर ने आगे बढ़कर तीव्र स्वर में कहा, यह क्या है भोला, क्यों इसे मार रहे हो? मस्ता, भैया न जाने कौन आदमी है फाटक से चिमटा खड़ा है। अभी मैं फाटक बंद करने गया तो देखा, मुझे देखते ही और दबक गया। बस मैंने चुपके से अपने साथ लिया, बच्चों को पकड़ लिया। जरूर से जरूर कोई चोर है। प्रेम, चोर सही तुम्हारा क्या चुराया तो नहीं, फिर क्यों मारते हो? यह कहते उसने बरामदे में आकर बैठ गए। चोर को भी लोगों ने वहीं लाकर खड़ा किया। जो ही लांटन के प्रकाश में उसकी सूरत दिखाई दी, प्रेमचक्र के मुंह से एक चीज सी निकल रही है, तो विशेषर सांग। विशेषर ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ सरकार, मैं विशेषर ही हूँ। प्रेमशंकर ने अपने नौकरों से कठोर स्वर में कहा, तुम लोग निरे गवार और मूर्ख हो, न जाने तुम्हें कभी समझ आएगी या नहीं। मस्ता, भैया हम तो बार बार पूछते रहे कि तुम कौन हो, या कुछ बोले ही नहीं तो मैं क्या करता। प्रेम, बस चुप रह गवार कहीं का। नौकरों ने देखा कि हमसे भूल हो गई, चुपके से एक करके सरक गए। प्रेमशंकर को क्रोध में देख कर सबके सब थर थर काँपने लगे। यद्यपि प्रेमशंकर उन सबसे भाईचारे का बर्ताव करते थे, पर जब वह उनका बड़ा आदर करते थे, उनके सामने चिलम तक न पीते थे। उनके चले जाने के बाद प्रेमशंकर ने विशेषकर शाह को खाट पर बैठा और अत्यंत लज्जित होकर बोले, शाह जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी आत्मा ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया, सबके सब उजड़ और मूर्ख। विशेषकर ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं भैया, इन्होंने कोई बुरा सलूक नहीं किया, मैं इसी लायक हूँ। आप मुझे खम्भे में बांध कर कोड़े लगवाए तभी मैं बुरा न मानूंगा, मैं विश्वासघाती हूँ। मुझे जो सजा मिलेगी वह थोड़ी है, मैंने अपनी जान के डर से सारे गाँव को मोटियामेट कर दिया, न जाने मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। पुलिस वालों की भभकी में आ गया, वह अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इतना डराते और धमकाते हैं कि सीधा साधा आदमी बिल्कुल उनकी मुट्ठी में आ जाता है। उन्हें जरूर से जरूर किसी देवता का इष्ट है, जो कि कुछ कहलवाते हैं वही मुंह से निकलता है। भगवान जानते हैं जो गौस खां के बारे में मुझे किसी से बात हुई है, मुझे तो उनके कातल का हाल दिन चढ़े मालूम हुआ जब मैं पूजा पाठ करके दुकान पर आया। पर जब दरोगा जी थाने में आ ले जाकर मेरी सांसद करने लगे तब मुझ पर ऐसे कोई जादू हो गया। उनकी एक एक बात दोहराने लगा। जब मैं अदालत में बयान दे रहा था तब शर्म के मारे मेरी आंखें ऊपर न उठती थी। मेरे जैसा कुकर्मी मनुष्य में न होगा, संसार में न होगा। जिन आदमियों के साथ रात दिन का रहना सहना उठना बैठना था, जो मेरे दुख दर्द में शरीक होते थे, उन्हीं की गर्दन पर मैंने छुरी चलाई। जब कादिर ने मेरा बयान सुनकर कहा, विशेषकर भगवान से डरो, उस घड़ी मेरा ऐसा जी चाहा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। मन होता था कि साफ साफ कह दूँ, यह सब सिखाई पढ़ाई बातें हैं, पर दरोगा जी को जो आँख उठती थी मेरा हियाव छूट जाता था। जिस दिन से मनोहर ने अपने गले फांसी लगाई है उस दिन से मेरी नींद हराम हो गई है। रात को सोते सोते चौक पड़ता हूँ जैसे मनोहर से रहाने खड़ा हूँ। साँझ होते ही घर की किवाड़ बंद करा लेता हूँ, बाहर निकलता हूँ तो जान पड़ता है मनोहर सामने आ रहा है। घर वाले उसी दिन से बीमार पड़े हुए, घर की तो ये दुर्दशा है, उधर गाँव में अंधेरा मचा हुआ है, सबके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, फैजूर करतार नित नए कानून रस्ते रहते हैं। भगवान सुक्कू चौधरी का भला करा जिनके हृदय में दया आई, 2 साल की मालगुजारी अदा कर दी, नहीं तो अब तक सारा गाँव भी दखल गया हो गया होता। इस पर फैजू जला जाता है। जब सुक्कू आ जाते तो भीगी बिल्ली बन जाता, लेकिन जो ही वह चले जाते फिर उपद्रव करने लगता। इन गरीबों का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता, जिसे चाहता है मारता है, डांट लेता है। एक दिन कादिर मियाँ के घर में आग लगवा दी और तो और आपके गाँव के वो बूटियों की इज्जत हुरमत भी बचती नहीं दिखाई देती। मनोहर के घर सास बहू में राड़ मची हुई है, दोनों अलग अलग रहती हैं। फरसुरात की बात, फैज और करतार दोनों बहू के घर में घुस गए, उस बेचारे ने चिल्लाना शुरू किया। सास पहुँच गई और लोग भी पहुँच गए, दोनों मिलकर भागे। सवेरे होते उनकी कसर निकाली। करतार ने मनोहर की दुल्हन को इतना मारा कि बेचारी पड़ी हल्दी पी रही है। वह सब मेरे पापों और सिवा किसी से पड़ता होगा। मैं भी इसी सारी विपत लीला की जड़ हूँ। भगवान मेरी न जाने क्या दुर्गति करेंगे। काहे भैया, क्या आप कुछ नहीं हो सकता? सुनते हैं तुम अपील करने वाले हो तो जल्दी कर क्यों नहीं देते? ऐसा ना हो कि मियाद गुजर जाए। तुम मुझे तलब करा देना, उस पर दरोगा हफली का इल्ज़ाम आएगा तो क्या? पर मैं अब की सब कुछ सच सच कह दूंगा। यही ना होगा कि मेरी सजा हो जाएगी, गांव का तो भला हो जाएगा। मैं 1500 में मदद भी कर सकता हूँ। प्रेमशंकर, हाई कोर्ट में तो मिसल देखकर फैसला होता है, किसी के बयान नहीं लिए जाते। विशेषकर भैया, कुछ लेने देने से काम चले तो 2000 1500 का मुंह मत देखो। मुझसे जो कुछ फरमाओगे उसके लिए हाजिर हो। बस बात मेरे मन में महीनों से समाई हुई है, अब पर आपको मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज कुछ सौदा लेने चला तो चौपाल के सामने फैजू मिल गए। कहने लगे, जाते हो तो रुपए लेते जाओ, मालिक के घर भिजवा देना। मैंने रुपए लिए और ढोंड़ी पर आकर छोटी बहू के पास जाकर रुपए भेज दिए। जब चलने लगा तो बड़ी बहू ने दीवार खाने में मुझे बुलाया। उनको देखकर ऐसा जान पड़ा कि मानो साक्षात देवी के दर्शन हो गए। उन्होंने मुझसे ऐसा ऐसा उपदेश दिया कि मुझसे क्या कहूँ, मेरी आंखें खुल गई। मन में ठान कर चला कि आपसे अपील दायर करने को कहूँ कि इसमें मेरा भी उद्धार हो जाए, लेकिन 2-3 बार आगा कर लौट गया। मुझको मुंह दिखाते ला जाती थी। सूरज डूबते समय मुख वक्त सिर पर आया, पर वही फाटक के पास जो उदाह में खड़ा सोच रहा था कि क्या करूँ। इतने में आपके आदमियों ने देख लिया और आपको शरण में ले आए। मुझ जैसे झूठे दगाबाज आदमी का एतबार है क्या? अब मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि फिर जो मेरा बयान लिया गया तो मैं एक एक बात खोल कर कह दूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी, आप जरूर अपील कीजिए। प्रेमशंकर विशेष शाह को महानीच कपटी अधम मनुष्य समझते थे। उनके विचार में वो मनुष्य कहलाने के योग्य भी न था, लेकिन उनकी इन ग्लान सूचक बातों ने उसे पिशाच शरण से उठाकर देवासन पर बैठा दिया। भगवान जिसे मैं इतना दुरात्मा समझता था, उसके हृदय में आत्मग्लानी का यह पवित्र भाव, यह आत्मकर्ष, यह ईश्वर भीरता, यह सदुद्गार, मैं कितने भ्रम में पड़ा हुआ था। दुनिया के लोग अनायास ही बदनाम करते हैं, पर मैंने तो एक दूसरे को बुरे को अच्छा ही पाया। इसे अपने सौभाग्य के सिवा और क्या कहूँ। ईश्वर, मुझे इस अविश्वास के लिए क्षमा करना। यह सोचकर उनकी आंखें आंसुओं से भर आए थे। बोले, शाह जी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे वही आनंद हुआ जो किसी सच्चे साधु को उपदेश होता है। मैं बहुत जल्द अपील करने वाला हूँ। अड़चन यही कि गवाहों का बयान कैसे बदले जाए। संभव हाई कोर्ट मुकदमे पर नजरसानी करने की आज्ञा दे दे और फिर इसी अदालत में मामला पेश हो, लेकिन बयान बदलने से तुम और डॉक्टर प्रियनाथ दोनों ही फंस जाओगे। प्रियनाथ ने तो अपने बचाव की युक्ति सोच ली, लेकिन तुम्हारा बचाव कठिन है, इसे अच्छी तरह सोच लो। विशेषकर खूब सोच लिया है। प्रेमशंकर, ईश्वर ने चाहा तो तुम भी बच जाओगे। मैं कल वकीलों से इस विषय में सलाह करूंगा। यह कहकर विशेषकर के खाने पीने का प्रबंध करने चले गए। ज्ञानशंकर लखनऊ से सीधे बनारस पहुंचे, किंतु उदास और खिन्न थे। न हवा खाने जाते थे, न किसी से मिलते जुलते। उनकी दशा इस समय उस पक्षी किसी थी जिसके दोनों पंख कट गए थे, पर या उस स्त्री किसी जो किसी दैवी प्रकोप से पति पुत्र विहीन हो गई थी। उनके जीवन की सारी आकांक्षाएं मिट्टी में मिल गई थी, जान पड़ती थी। अभी एक सप्ताह पहले उनकी आशालता सुखद समीरणा में लहरा रही थी। उस स्थान पर केवल झुलसे हुई पत्तियों का एक ढेर था। उन्हें पूरा विश्वास था कि राय साहब ने सारा वृत्तांत गायत्री को लिख दिया होगा। पूरी के लिए लपके थे, आधे ही हाथ से गई। उन्होंने ऐसे विषम वेदना, यह भी मेरे मनोभाव में कलई खुल गई। अगर धैर्य का कोई आधार था तो ये दार्शनिक विचार था। जब तक इन अवस्थाओं में मेरे लिए अपने लक्ष्य पर पहुंचने का कोई और मार्ग न था। उन्हें अपने कृत्यों पर लेशमात्र भी ग्लान या लज्जा न थे। बस यही खेद था कि मेरे सारे षड्यंत्र निष्फल हो गए। लखनऊ से उन्होंने गायत्री को कई पत्र लिखे थे, पर बनारस से उसे पत्र लिखने की हिम्मत न पड़ती थी। उसके पास से आई चिट्ठियों को भी वह बहुत डरते डरते खोलते थे। समाचार पत्र खोलते उनके हाथ कांपने लगते थे। विद्या के पत्र रोज आते थे, उन्हें पढ़ना ज्ञानशंकर के लिए अपनी भाग्य रेखा पढ़ने से कम रोमांचकारी न था। वह एक एक वाक्य को इस तरह डर डर कर पढ़ते मानो किसी अंधेरी गुफा में कदम रखते हों। भय लगा रहता था कहीं उस दुर्घटना का जिक्र ना आ जाए। बहुधा साधारण वाक्य पर विचार करने लगते कि कहीं इसमें से गुढ़ाशय, कोई रहस्य, कोई उत्तिक तो नहीं। 10वें दिन गायत्री के यहाँ से एक बहुत लंबा पत्र आया। ज्ञानशंकर ने उसे हाथ में लिया तो उसकी छाती बल्लियों छिलने लगी। बड़ी मुश्किल से यह पत्र खोला और जैसे हम कड़वी दवा को एक घोट में पी जाते, उन्होंने एक ही सरसरी निगाह पत्र पढ़ लिया। चित्त शांत हुआ, राज साहब की कोई चर्चा न थी। उन्होंने निश्चिंत होकर पत्र को दोबारा पढ़ा। गायत्री के मन उनके न भेजने पर मन में स्पष्ट शब्दों में अपनी विकलता प्रकट की थी। उन्होंने शीघ्र गोरखपुर आने के लिए बड़े विनीत भाव से आग्रह किया था। ज्ञानशंकर ने सावधान होकर सांस ली। गायत्री ने अपने चित्त की दशा को छिपाने का बहुत प्रयत्न किया था, पर एक एक शब्द ज्ञानशंकर के मरणासन आशाओं के लिए सुधा के तुल्य था। आशा मन ही संतोष हुआ कि अभी बात नहीं बिगड़ी, मैं अभी भी जरूरत पड़ने पर शायद उसकी दृष्टि में निर्दोष बन सकूँ, शायद राय साहब के लाछनों को मिथ्या सिद्ध कर दूँ, शायद सत्य को असत्य कर सकूँ। संभव है मेरे सजल नेत्र अब मेरी निर्दोषता का विश्वास दिला सकें। इसी आवेश में उन्होंने गायत्री को पत्र लिखा, जिसके अधिकांश विरक्त व्यथा को भेंट करने के बाद उन्होंने राय साहब के मिथ्याक्षेप की ओर संकेत किया। उनके अंतिम शब्द थे, आप मेरे स्वभाव और मनोविचार से भलीभांति परिचित हैं। मुझे अगर जीवन में कोई अभिलाषा है तो यही कि मुरली की धुन सुनते हुए इस संसार सागर से प्रस्थान कर जाऊँ मरने लगो तो उसी मुरली वाले की सूरत आंखों के सामने है और यह सिर राधा की गोद में हो। इसके अतिरिक्त मुझे कोई इच्छा और कोई आलसा नहीं। राधिका की एक तिरछी चितवन, एक मृदुल मुस्कान, एक मीठी चुटकी, एक अनोखी छटा पर मैं समस्त संसार की संपदा को निछावर कर सकता हूँ। पर जब संसार में हूँ, संसार की कालिमा में क्यों कर बच सकता हूँ। मैंने राज साहब से संगीत परिषद के विषय में कुछ स्पष्ट भाषण किया था। इसका फल यह हुआ कि मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। आपसे अपनी विपत्ति कथा कहाँ कहूँ, आपको सुनकर दुख होगा। उन्होंने मुझे मारने के लिए पिस्तौल हाथ में ले लिया था। अगर न भागाता तो यह पत्र लिखने के लिए जीवित न रहता। मुझे हुक्म हुआ है कि अब फिर मुझे मुंह न दिखलाऊँ। यही नहीं, मुझे आपसे भी पृथक रहने की आज्ञा मिली है। इस आज्ञा को भंग करने का ऐसा कठोर दंड निर्वासित किया गया है, इसका उल्लेख करके मैं आपको कोमल हृदय को दुखाना नहीं चाहता। मेरे मौन व्रत का यही कारण है। संभव है आपके पास भी इस आशा का पत्र पहुंचा हो और आपको भी मुझे दूध की मक्खी समझने का उपदेश दिया गया हो। ऐसी दशा में आप ज्योतिष समझे करें। पिता की आज्ञा के सामने से झुकाना आपका कर्तव्य है, उसका पालन करें। मैं आपसे दूर रहकर भी आपके निकट हूँ। संसार की कोई शक्ति मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती। आध्यात्मिक बंधन को कौन तोड़ सकता है। श्री कृष्ण का प्रेम निरंतर राधा की याद में संलग्न रहेगा। आपसे केवल यह भिक्षा मांगता हूँ कि मेरी ओर से मनमुटाव न करें और अपने उदार हृदय के एक कोने में मेरी स्मृति बनाए रखें। ज्ञान शंकर के जाने के बाद गायत्री के क्षण काटना दुस्तर हो गया था। उसे अब ज्ञात होता कि मैं कितने गहरे पानी में आ गई हूँ। जब तक ज्ञान शंकर के हाथों का सहारा तो उसे गहराई का अंदाजा ना होता था। अब सहारे के टूटते ही उसके पैर फिसलने लगे। वह संभलना चाहती थी पर तरंगों का वेग संभलने न देता था। उसकी ज्ञान शंकर पूरे साल भर के बाद गोरखपुर से निकले थे। वह नित्य उन्हें देखती थी, नित्य उनसे बातें करती थी। यद्यपि यह अवसर दिन में एक या दो बार से अधिक न मिलता था और उन्हें समीप देखकर उसका हृदय संतुष्ट रहता था। अब पिंजरे को खाली देखकर उसे पक्षी की बार बार याद आती थी। वह सरल और गौरवशाली थी लेकिन उसके हृदय स्थल में प्रेम का एक उबलता हुआ सोता छिपा हुआ था। वह अब तक अभिमान के मोटे कत्तल से दबा हुआ प्रवाह का कोई मार्ग न पाकर एक सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ था। यही सुषुप्ति उसका सतीत्व थी और भक्ति और अनुराग ने उस अभिमान के कत्तल को हटा दिया था और उबलता हुआ सोता प्रबल वेग से द्रवित हो रहा था। वह आत्मविस्मृति की दशा मग्न हो गई थी। वह चेत सी हो गई थी। उसे लेश मात्र भी अनुमान न होता था कि यह भक्त मुझे वासना की ओर खींच लिए जाती है। वह इस प्रेम के नशे में कितनी ऐसी बातें करती थी और कितनी ऐसी बातें सुनाती थी जिन्हें सुनकर वह पहले कानों पर हाथ रख लेती थी, जो पहले मन में आती थी आत्मघात कर लेती, परंतु अब वह गोपिका थी। वह सदनुराग की साक्षात प्रतिमा थी। इस आध्यात्मिक उद्गार में वासना का लगाव कहा, ऐन्द्रिक तृष्णाओं का मिश्रण कहा, कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की रट ने उसके हृदय और आत्मा की पवित्र प्रेम से परिपूर्णित कर दिया है। गायत्री जब ज्ञान शंकर की ओर चंचल चितवनों से ताकती या उसके सतृष्ण नेत्रों को अपने मृदुल मुस्कान सुधा से प्लावित करती तो वह अपने को गोपिका समझती जो कृष्ण की चिटोली या रहस्य कर रही हो। उसकी चितवन को और मुस्कान में सच्चा प्रेमानुराग झलकता था। ज्ञान शंकर अब उसे प्रेमोन्मत्त नेत्रों से देखते हुए उसकी निष्ठुरता और अकृपा की गिला करते तो उसे इसमें भी कई पवित्र भावों की झलक दिखाई देती थी। इस प्रेम रहस्य और आमोद प्रमोद का चस्का दिनों दिन बढ़ता जाता था। उन इन प्रेम कल्पनाओं के बिना चित्त उचटता रहता था। गायत्री इसी विकलता की दशा में कभी ज्ञान शंकर की दीवान खाने की ओर जाती, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बाग में, पर कहीं जी न लगता। वह गोपिकाओं की विरह व्यथा को अपने वियोग दुख से तुलना करती, सूरदास के उन पदों को गाती जिनमें गोपिकाओं का विरह वर्णन किया गया है। उसके बाग में एक कदम का पेड़ था, उसकी छांव में हरी घास पर लेटी हुई कभी गाती, कभी रोती, कभी कभी उद्विग्न होकर टहलने लगती, कभी सोचती लखनऊ चलो, कभी ज्ञान शंकर को तार देकर बुलाने की इरादा करती, कभी निश्चय करती अब उन्हें कभी बाहर न जाने दूंगी। उसकी सूरत उसकी आंखों फिरा करती, उसकी बातें कानों में गुजा करती, कितना मनोहर स्वरूप है, कितनी रसीली बातें, साक्षात कृष्ण रूप है। उसे आश्चर्य होता कि मैंने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया, क्या मैं उनके साथ न जा सकती थी। ज्ञान शंकर को पत्र लिखती तो उसकी निर्दयता और हृदय शून्यता का खूब रोना रोती। उनके पत्र आते तो बार बार पढ़ती, उनके प्रेम कथन में अब संकोच और लज्जा बाधक न होती थी। गोपियों की विरह व्यथा में उसे अब एक एक करुण वेदना में आनंद मिलता था। प्रेम शंकर की दो चार चौपाइयां भी न पढ़ने पाती थी कि आंखों में आंसू की झड़ी लग जाती। लेकिन जब ज्ञान शंकर बनारस चले गए और उनकी चिट्ठियों का आना बिल्कुल बंद हो गया तब गायत्री को ऐसा अनुभव होने लगा मानो मैं संसार में हूँ ही नहीं, यह कोई दूसरा निर्जन नीरव अचेतन संसार। उससे ज्ञान शंकर के बनारस आने का समाचार ज्ञात न था। वह लखनऊ के पते से नित्य प्रति पत्र भेजती रही लेकिन जब लगातार कई पत्रों का जवाब न आया तब उसे अपने ऊपर झुंझलाहट होने लगी। वो गोपियों के भांति अपना तिरस्कार करती थी कि मैं क्यों ऐसे निर्दय निष्ठुर कठोर मनुष्य के पीछे अपनी जान खपा रही हूँ, क्या उनकी तरह मैं भी निष्ठुर नहीं बन सकती। वह मुझे भूल सकते हैं तो मैं उन्हें भी भूल सकती हूँ, किंतु एक ही क्षण उसका यह मान लुप्त हो जाता और फिर कोई वैसे इधर उधर फिरने लगती। किंतु जब 10वें दिन ज्ञान शंकर का विवशता सूचक पत्र पहुंचा तो पढ़ते गायत्री का चंचल हृदय हथीर उठा। वह उस विवशकारी आवेश के साथ उनकी ओर लप की और उसकी प्रीति की पहली परीक्षा थी। अब तक उसका प्रेम मार्ग कांटों से साफ था, यह पहला कांटा था जो उसके पैर में चुभा। क्या यह पहली बाधा मुझे प्रेम मार्ग से विचलित कर देगी? मेरे ही कारणों तो ज्ञान शंकर पर मुसीबत आई है, मैं ही तो उनकी इन विडंबनाओं की जड़ हूँ। पिताजी उनसे नाराज है तो क्या हुआ, मुझे इसकी चिंता नहीं। मैं तो प्रेम नीति से मुंह मोड़ू, प्रेम का संबंध केवल दो हृदयों से, किसी तीसरे प्राणी को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। आखिर पिताजी ने उन्हें क्यों मुझसे पृथक रहने का आदेश दिया? वे मुझे क्या समझते हैं? इसका सारा जीवन भोग विलास में गुजरा है, वह प्रेम की गुड़ाशय क्या जाने। उन्हें इस पवित्र मनोवृत्ति का क्या ज्ञान? परमात्मा ने उन्हें ज्ञान ज्योति प्रदान की होती तो ज्ञान शंकर के आत्मकष्ट को जानते, उनकी आत्मा का महत्व पहचानते, तब उन्हें विदित होता कि मैंने ऐसे पवित्र आत्मा पर दोषारोपण करके कितना घोर अन्याय किया है। पिता की आज्ञा मानना मेरा धर्म अवश्य है, किंतु प्रेम के सामने पिता की आज्ञा की क्या हस्ती है? यह ताप अनादि ज्योति की एक आभा है, यह दाह अनंत शांति का मंत्र है, इस ताप को कौन मिटा सकता है? दूसरे दिन गायत्री ने ज्ञान शंकर को तार दिया, मैं आ रही हूँ, और शाम की गाड़ी से माया शंकर को साथ लेकर बनारस चली।